सफा नंबर 181, ना के कौमों का इसके नजदीक कौम एक ही थी यानी हिंदुस्तानी, जिससे हिंदुओं की हो ना हो बहसियत एक कौम मुसलमान की बरहाल नफी हो जाती थी। मैं दरअसल ये सब कुछ इस ख्याल से अर्ज कर रहा था कि अगर सरदस्त मुसलमान गैर मुतहद हैं, अवाम की नज़र सियासी मुआशी जबूं हाली पर है और तलीम याफ्ता नौजवानों से कहा जाता है कि इन इस्लाम के पर्दे में रजत पसंदी का सबक दिया जा रहा है, तो क्या ये बेहतर ना होगा कि मुसलमान मर्दाना वार आज़ादी के जद्दोजहद में हिस्सा लें, जो इनके अंदर जिंदगी भी पैदा हो जाएगी और वो हालात हाजरा से भी बेतलक नहीं रहेंगे। कांग्रेस के मुसलमान तरफदार भी तो यही कहते थे कि अगर मुसलमान यूं ही खामोश बैठे रहे तो हमेशा रजत पसंदाना जमातों का शिकार रहेंगे, हत्ता के जब आज़ादी मिल गई तो वो इन सियासी और माशी तकाजों के मुकाबले में जो इस वक्त पैदा होंगे अपने आप को नाकाम और आजज पाएंगे। लेकिन मुश्किल ये थी कि मुसलमान जब भी मुतहद होकर आज़ादी की जद्दोजहद में शरीक होते, हिंदू इनसे अलग हो जाते, जैसे तरीक तुर्क मवालात की सूरत में हुआ। फिर जब तक लीग मजबूत नहीं हुई और मुसलमान यास व बेदिली का शिकार रहे, इस किस्म की तजवीज़ें अक्सर जहन में आती जिनकी अगर हजरत अलामा तायद भी करते तो इस अरशाद के साथ कि मुसलमान असूलन और अमलन अपना कौमी तशखस बरसूरत बरकरार रखें। फरमाया क्यों नहीं, अगर लेकिन मुसलमान कुछ करें भी, मुसलमान कुछ करते तो है नहीं, वो समझते हैं अंग्रेज हिंदुस्तान से हरगिज नहीं जाएंगे, लिहाजा इस किस्म की तजवीज़ों से क्या हासिल। नंबर 3, लिहाजा इनका इंतशार व इफ्तराक। सफ़ा नंबर 182, जुमारात 3 फरवरी, देर तक हजरत अलामा की खिदमत में हाजिर रहा, 1:30 बज गया। हजरत अलामा की तबीयत फिल जुमला अच्छी थी मगर अवारंस में कोई फर्क नहीं, लिहाजा कोशिश यही रही कि हत्तुल वसा इन्हीं गुफ्तगू की जहमत ना दी जाए। लेकिन फिर ये भी तो मुमकिन नहीं कि हजरत अलामा के हजूर सर ता सर खामोशी रहे। चुनाचा उन्होंने जब ये दरियाफ्त फरमाया कि आज क्या खबर है, तो जुबान की इस कोशिश का जिक्र आ गया कि आलम इस्लाम से गहरे रवाबत कायम किए जाएं। सवाल ये था कि क्या जापान को इस्लामी मशरक में असर रसूख पैदा करना इसलिए मकसूद है कि अक्वाम यूरोप की तरह इसे भी सियासी और मौशी गजब व तगल्लब का एक रास्ता मिल जाए, या इसलिए कि मगरबी शहनशाहियत और इज्तमालियत के खिलाफ कोई नया महाज कायम करना मंजूर है। नंबर 1, जापान की हवस सल्तनत और जू अल अर्ज ने जंग अजीम 1914-18 के बाद जब चीन और मंचूरिया का रुख किया तो इस्लामी मशरक से भी तलुकात बढ़ाए, हत्ता के कोबे में एक मस्जिद भी तमीर हुई। फिर महवरी ताकतों से मिलकर दूसरी आलमगीर जंग 1939-45 में शिरकत की और बिल आखिर बुरी तरह शिकस्त खाई। इन कोशिशों का सारा नक्शा हमारे सामने है, लेकिन ये इस वक्त यानी 1938 की बात है जब जापानी ताकत इंतहाई रूज पर थी। हजरत अलामा ने फरमाया, अंदरी सूरत तो ये भी मुमकिन है कि जापान चीन के बाद हिस्सों में एक इस्लामी रियासत कायम करने की कोशिश करे और ये रियासत इसके जेरे असर रहे। अरशाद हुआ, पिछली सदी में तो चीनी तुर्कों ने अपनी आज़ाद रियासत कायम कर ली थी मगर अंग्रेज़ों ने इन्हें कामयाब ना होने दिया, दरअसल वो खुद ही जनूबी चीन पर काबज करने के दरपे थे। सफ़ा नंबर 183, 2, मशरकी या चीनी तुर्कस्तान इस्लामी खित्ता है जहाँ सदियों से मुसलमान बरसरे इकतदार रहे, बजज इस जमाने के जब सारा इस्लामी मशरक चंगेजियों के कब्जे में आ गया था। इनसे इस्तखलास के बाद 18वीं सदी के वस्त तक यहाँ फिर मुसलमान आज़ादी से हुकूमत करते रहे, ताअंका आपस की खाना जंगी में एक फरीक ने चीन से अमदाद तलब की। ये 1758 का वाक़ है जब एक चीनी लश्कर जंगिया में दाखिल हुआ और आते ही कत्लो गारत गरी शुरू कर दी, मजबूरन अहले जंगिया ने चीन की अतात कबूल कर ली। रफ्ता रफ्ता खता व खतन और यारकंद भी इसके कब्जे में आ गया और सारे मुल्क में जबरो कहर का एलोपैथिक ऐसा दौर शुरू हुआ जिससे तंग आकर कुछ लोगों ने तर्क वतन और कुछ लोगों ने चीन के खिलाफ जंगी कार्रवाइयाँ शुरू कर दी। अव्वल 1825 और फिर 1849 में लेकिन नाकाम रहे। इस पर आबादी का एक हिस्सा मगरबी तुर्कस्तान में हिजरत कर गया। 1850 57 में यकूब खान ने चीनियों के खिलाफ नहायत कामयाबी से जंग की और एक सदी की गुलामी के बाद चीनी तुर्कस्तान फिर आजाद हो गया। लेकिन 1864 में चीनी फिर इस पर काबूज हो गए। अब एक तरफ रूस और दूसरी तरफ चीन का जोर बढ़ने लगा, हत्ता कि ये इस्लामी खित्ता संक्यांग के नाम से चीनी सल्तनत का एक जुज बन गया। और अब तक पिछली जंग अजीम में यहाँ एक अंग्रेज नौ मुस्लिम खालद शेल्ड्रक ने इस्लामिस्तान के नाम से एक आज़ाद हुकूमत के क्याम का ऐलान किया था, लेकिन वो एक बेसरो पासी बात थी कि इधर सुनने में आई और उधर ख़त्म हो गई। 1932-33 में अलबत्ता चीनी हुकूमत के खिलाफ एक मुस्लिम सरदार लश्कर ने खरूज किया मगर नाकाम रहा। यह सरदार लश्कर बड़ा कमसन था और इसका नाम भी चीनी था, वो ठीक मालूम नहीं हो सका कि था कौन। इसकी शख्सियत बड़ी पुरिसरार थी। इस सिलसिला में हजरत अलामा का बयान इनके मजमुआ मजामीन व बयानात सफ़ा नंबर 184 व तकरीर में मर्तबा सैयद अब्दुल वहाद, जिसे शेख मोहम्मद अशरफ ने 1965 में शाया किया। नंबर 3 तिब्बत देर तक बरतानवी हल्का असर सफायर और इंडुलेंस में रहा, चुनचा भारत और चीन की मौजूदा कशमकश भी दरअसल इसी खिता लाइन का नतीजा है जो बरतानवी हुकूमत ने कभी हिंदुस्तान और चीन के दरमियान हदबंदी के लिए खींचा था। फिर कुछ तामल के बाद फरमाया, ये सियासी जोड़ तोड़ है। सियासी जोड़ तोड़ से कुछ नहीं होता, हुआ तो यूं ही कि मुसलमानों की सियासी और इज्तमाही तहरीकात में इस्लाम का रंग पैदा हुआ, अरशाद हुआ, ज़रूरत है इस्लामी निज़ाम मदनीयत की, अहया की। नंबर 1 और ये वो अमर है जिस पर इस वक्त किसी की तवज्जो नहीं थी। शाम को फिर हाजिर खिदमत हुआ। कर्शी साहब, राजा साहब और चौधरी साहब पहले से मौजूद थे, देर तक नशिस्त रही। सफ़ा नंबर 185 शंबा 5 फरवरी चाश्त के करीब हाजिर हुआ। हजरत अलामा तकियों का सहारा लिए हुक्के के कश ले रहे थे। अली बख्श पाइंती की तरफ बैठा इनके पांव दाब रहा था। मैंने सलाम अर्ज किया और मिजाज पूछा तो हसबे ममूल फरमाया, अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा हूँ, रात कोई तकलीफ नहीं हुई। लेकिन मैंने देखा कि हजरत अलामा कुछ मखमल से है। अर्ज किया, क्या कर्शी साहब तशरीफ लाए हैं? फरमाया, हाँ नबज देख गए हैं, लेकिन अब कुछ बेचैनी सी है। मैंने अर्ज किया, अरके गुल गौ जुबान मौजूद है, दो एक घूंट पी लीजिए। अरशाद हुआ, ठीक है, मुझे इसका ख्याल ही नहीं आया, अली बख्श अर्क ले आओ। अली बख्श उठा, हजरत अलामा ने अर्क पिया, तबीयत कदरे बहाल हुई तो कुछ देर सुस्ता कर फरमाया, आज क्या खबर है? मैंने कांग्रेस की मजलिस आमला का हाल बयान किया तो इस करारदाद का जिक्र आ गया जिसका मुफाद ये था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू और गांधी जी मिस्टर जिना से खतो कताबत करेंगे। अरशाद हुआ, मैंने जिना को लिख दिया है कि 3 बातों पर खास तौर पर जोर दें। नंबर 1 आइनी तहफजात, नंबर 2 सिंध का हलहाक पंजाब से, और नंबर 3 शख्सी और दीवानी कवानीन की बरकरारी। शाम को फिर हाजिर हुआ, हिटलर की सामियत दुश्मनी के सिलसिला में यहूद की नस्ली असबियत का जिक्र आ गया। यहूद हैं तो सामी, लेकिन सब के सब बनी इसराइल नहीं है, इनमें और भी। सफा नंबर 186 भी सामी अनासर शामिल हैं जो इम्तादाद जमानत के साथ एक नस्ली सियासी जमात बन गए, और अर्ज फलस्तीन अर्ज मौद की बाजियाबी इनका नस्बुल ऐन करार पाया, इसलिए कि कोई भी सियासी ग्रोह हो वो अपनी हस्ती जब भी कायम रख सकता है जब इसे कोई किताए अर्ज मिल जाए। अरशाद हुआ, यही वजह है कि इस तहरीक का इंतसाब जबल सिहोन ही से हो सकता था। मैंने अर्ज किया, इस आयात की तरीकी हसीयत क्या है जिसमें कहा गया है कि इनका एक ग्रोह हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान लाया और एक ने इनकार किया, सो जो लोग ईमान लाए अल्लाह ने इनके दुश्मनों के खिलाफ इनकी ताइद की और वो फतह मंद होकर निकले। तर्जमा अरशाद हुआ, यहूद बहुत से कबायल में मुनकसम थे, मुमकिन है इनकी किसी जंग की तरफ इशारा हो। कर्शी साहब आ गए, चौधरी साहब और राजा साहब भी। हजरत अलामा की तबीयत सुबह की बनिस्बत ज्यादा हशाश बशाश थी। हसबे ममूल रोजमर्रा सियासत पर गुफ्तगू चल निकली। देर तक बातें होती रही। सफा नंबर 187, यकशंबा 6 फरवरी। आज गुफ्तगु खिलाफे अरादा बड़ी तवील रही। कर्शी साहब हसबे ममूल नबस देख गए थे, फिर चौधरी साहब आ गए, वो उठ कर जा ही रहे थे कि मैं हाजिर खिदमत हो गया। गुफ्तगु यही थी कि मुल्क का क्या हाल है, यूरोप में क्या हो रहा है। चौधरी साहब गए तो मैंने ये बहस छेड़ दी कि हिटलर के नज़दीक मशरक से किसी सियासी बेदारी की तवक्को नहीं, और मशरकी नस्लें इस काबिल ही नहीं कि इनका कोई मखसूस कौमी और मिली नस्बल ऐन हो, जमात अहमदिया के लिए वो जद्दोजहद करें। मैंने अर्ज़ किया, हिटलर का ये कहना कहाँ तक सही है? क्या मशरक नस्लों में बिलफिल वाक़या अज़्म व हिम्मत का खात्मा हो चुका है? क्या ये मुमकिन नहीं कि इनका अपना कोई निसबुल ऐन हो? नंबर एक, हिटलर को इस अमर से तो इनकार नहीं था कि मशरक में तरह तरह की सियासी तहरीकें जारी हैं और अक़वाम मशरक अपने अपने मकासद के लिए जद्दोजहद कर रही हैं, लेकिन एक तो हिटलर का गरूर नस्ल इनको खातर में नहीं लाता, दूसरा वो रूसी इश्तमालियत, फ्रांसीसी जमहूरियत और बरतानवी शहनशाहियत से जिस किस्म की टक्कर लेना चाहता था, इसमें अक्वाम मशरक की ताइद व हमायत का सवाल ही पैदा नहीं होता था, ना इसे इनके मकासद से कोई हमदर्दी थी। फरमाया, बज़ाहिर तो कुछ ऐसा ही मालूम होता है, मशरक पर सदियों से इन्हितात तारी है, लेकिन ये बात है गलत। तुर्क अरब अफगान नस्लन अहले जर्मनी से कहीं बेहतर है। नंबर दो, मुकाबलतन तुर्कों अरबों और अफगानों के नस्ली खसाइस पर बहुत कुछ लिखा गया है, लेकिन इस नुक्ता नज़र से नहीं कि एक खालिस्तन आलमगीर इंसानियत की तमीर में वो अपने मखसूस नस्ली फजाइल को कायम रखते हुए किसी तरह हिस्सा ले सकते हैं। इस मौजू पर बातहकीक कलम उठाया जाए तो ये मुताला बड़ा मुफीद साबित होगा। मैंने अर्ज किया, मगरब का यह नस्ली गरूर ही शायद इस ठीक या गलत ख्याल का सरचश्मा है कि यूरोपियन कौमों के नज़दीक मशरकी कौमों के निस्तो नबूद हो जाना ही बेहतर है। फरमाया, तुम कहना क्या चाहते हो? तुम्हारा सवाल गैर वाज़े है। मैंने अर्ज किया, मैं ये कहना चाहता हूँ कि फ़र्ज़ कीजिए हिटलर एक मसाली जर्मन रियासत कायम कर लेता है, जैसा कि बस गम खुद इसने कायम कर ली, अब अहले मशरक तो कहीं रहे, इसके नज़दीक बाज मगरबी अकवाम भी इस काबिल नहीं कि इस रियासत का जुज बन सकें, वो नस्लन जर्मनों से कम तर हैं, लिहाजा इस निज़ाम मुआशरत का साथ नहीं दे सकती जो हिटलर अपने ज़ेर नफूक कायम करना चाहता है। इनकी मौजूदगी तहजीब व तरक्की के रस्ते में हारज है। अगर ये बात ठीक है तो इस तरह का नस्ली अंसर क्या रियासत के लिए फसाद व हलाकत का बायस नहीं होगा? फरमाया, कैसे? मैंने अर्ज़ किया, यूं कि ये एक जामद और रजत पसंद अंसर होगा, लिहाजा रियासत इसकी मौजूदगी बर्दाश्त नहीं करेगी। अंदरी सूरत हम क्या कहेंगे, ऐसी नस्लों का क्या अंजाम होना चाहिए? अरशाद हुआ, लेकिन तुम जो बात कहना चाहते हो अभी तक नहीं कही, तुमने कुछ मुकदमात कायम किए हैं, नतीजा क्या है? मैंने अर्ज़ किया, यही कि या तो बरतर कमतर की हस्ती मिटा दे या कमतर रियासत पर छा जाए, मगर बज़ाहिर ऐसा होना मुमकिन नज़र नहीं आता, इसलिए कि कमतर के मानी ही ये हैं कि बरतर के मुकाबले में आजज रहे। हज़रत अल्लामा ने फरमाया, या मैंने अर्ज़ किया, या ये कि बरतर कमतर को अपने अंदर जज़ब कर ले, मगर ये तजर्बा ज़्यादा कामयाब नहीं रहता। सफ़ा नंबर 179, तहरीक से पता चलता है कि इसको कोशिश में बिल अमूम कम तर नस्ल के मायाब बरतर नस्ल में फैल गए। ऐसा बहुत कम हुआ कि कम तर नस्ल बरतर नस्ल की खूबियों का एहतसाब करते हुए अपने आप को इनकी सतह पर ले आई। लिहाजा अगर किसी नस्बुल ऐन के पेश नज़र ज़रूरी है कि सिली इम्तियाजात कायम और बरकरार रहें ताकि इसके हसूल की जद्दोजहद में फ़र्क ना आए, तो नस्ल का मसला कैसे हल होगा? इसका मतलब तो यह है कि दुनिया हमेशा नस्लों में बटी रहे और नोह इंसानी की बाहम दगर अवेजश और सिलसिला जंगो जदल कभी ख़त्म ना हो। अरशाद हुआ, तुम चाहते हो नस्ल का मसला एक दिन में हल हो जाए? ये मसला इन मानों में तो हल हो रहा है कि अब किसी नस्ल का खालिस्तन कोई वजूद नहीं, नस्ली तासबात अलबत्ता कायम है, मगर फिर सवाल यह है कि अगर नस्ल के कुछ खास फजाइल में तो इनके तहफ़ में हर्ज ही क्या है? नंबर एक, गोया सारा मसला फजाइल की हफाजत और जाइल के अजाले का है, क्योंकि इस रूए फितरत सब इंसान एक है, लिहाजा अगर वो असबाब बाकी ना रहे जिनसे नस्ली तासुबात को तहरीक होती है, तो हम एक हम रंग आला करदार इंसानियत का इर्तका मुमकिन है, जिनका अपना एक शौरे ज़ात हो। मैंने अर्ज किया मतलक नहीं, बशर्तिया इन फजाइल से एक खालस्तर इंसानी मुआशरा तमीर हो सके। अरशाद हुआ दुरुस्त है, और यही वजह है कि इस्लाम ने शौब व कबाइल की मौजूदगी से इनकार नहीं किया। अलबत्ता तफूक और बरतरी की बिना तकवा पर रखी है, बल्कि नस्ली तफूक और बरतरी का ये कहकर खात्मा कर दिया कि जुबान और रंग का इख्तलाफ भी अल्लाह ताला की एक आयत है। अब अगर तकवा मदारे अमल ठहरे तो नस्ली बरतरी और कमतरी अला हाजा नस्ली तासुबात और नस्ली अवेजश का सवाल ही पैदा नहीं होगा। सफा नंबर 190। नंबर दो, अल हजरात 13। नंबर तीन, अल हजरात 22। नंबर चार, अल रोम 22। मैंने अर्ज किया आपका अरशाद बजा है, लेकिन मुझे सिर्फ ये खलश है कि जब तकवाए मदार अमल है तो रियासत यानी इस्लामी रियासत किस नहज पर कदम उठाए, यानी वो क्या जराए होंगे कि अगर इनको इख्तियार किया गया तो नस्लों की मौजूदगी के आलिल रगम नस्ली इम्तियाजात का खात्मा हो जाएगा। फरमाया, फरूक आजम की मिसाल तुम्हारे सामने है, रियासत का वजूद जब ही कायम रहता है कि हर तरह की सलाहियतों से काम लिया जाए, गोया इसकी नज़र फजाइल पर हो अफराद पर ना हो। अफसोस है आगे चलकर मुसलमानों ने इस मिसाल से फ़ायदा उठाया, अरबों के नस्ली खसाइब जिस कदर इस्लाम के लिए मुफीद हुए इतना ही इनकी नस्ली असबियत से नुकसान पहुंचा। मैंने अर्ज किया इस सिलसिला में एक बड़ी दिलचस्प बात यह है कि इब्ने खलदून ऐसे आज़ाद ख्याल मुफक्कर के नज़दीक भी एक अरब खतून की शादी रानी मर्द से नहीं हो सकती, बल्कि इसे गलत महनी पनाए। ये एक और नुक्ता नज़र है जिसके मतहत जनाब फरूक आजम की तदाबीर नज़्मो नसक और अलमदारी का मुताला ज़रूरी है। सफ़ा नंबर 191। इस्लाम और मुसलमानों ही को नहीं खुद अरबों को भी जाफर बरमक्की और अब्बासिया के खुफिया निकाह के बारे में जो रवायत मशहूर है, इसकी तरदीद करते हुए इब्ने खलदून ने लिखा है कि मुनजमला और बहुत सी बातें के जिनकी बिना पर यह रवायत सरता सर लघु और बेबुनियाद ठहरती है, ये भी सोचना चाहिए कि एक अरब खतून की शादी जिनका तल्लक खानदान खिलाफत से था एक ईरानी मर्द से, ख्वा इसका मर्तबा कैसा भी बुलंद हो, कैसे हो सकती थी। मुलाहजा हो मुकदमा। अरशाद हुआ, और इस्लाम ना किसी औरत को किसी मर्द से निकाह करने पर मजबूर करता है ना रोकता है, ये मामला इनकी अपनी पसंद का है, लिहाजा इस्लाम का फैसला है कि एक शख्स औरत एक मुसलमान औरत जिस मुसलमान मर्द से चाहे शादी कर सकती है। इसने ये बात हर शख्स के जाती इंतखाब पर छोड़ दी है, जिसमें मुमकिन है वो गलती भी करे, लेकिन फिर इंसान का कौन सा अमल है जिसमें गलती और खता का एहतमाल नहीं। बहरहाल हिंदुस्तान में मुगलों ने राजपूत शहजादियों से महज इसलिए शादियां की कि राजपूत एक जंगजू कौम है, मुगल समझते थे कि इनसे अजवाजी तलुकात कायम किए तो मुगलों के नस्ली खसाइल को कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इस मसहलत की बिना पर के अजवाज भी एक बहुत बड़ा जरिया है आलमगीर इंसानियत की तश्कील और नस्ली और जुग्राफियाई असबीतों के अजाले, बल्कि एक ऐसी नस्ल पैदा करने का जो सिर्फ फजाइल इखलाक से बहरा मंद हो। इस सिलसिला में इस्लामी कानून अजवाज का ये निगाह गैर मुताल करना जरूरी है, इस्लामी ना के महज राइजुल वक्त फकी नुक्ता नजर से, ताकि हम समझ लें कि इस्लाम ने अजवाज को क्या हसीयत दी है। शायद इस बिना पर के वो शुबा अहले किताब हैं, लिहाजा हुकूमत इनसे जजिया लेती थी। क्या इसका ये मतलब है कि अगर राजपूत मुसलमान हो जाते तो मुगलों को शायद इन्हीं बेटियां देने से भी इनकार ना होता। सफा नंबर 192। कदर सकूत के बाद फिर अर्शाद हुआ, नस्ल का मसला खासा परेशान कुन है, लेकिन अब कौन सी नस्ल महफूज है। इस्लाम ने शादी ब्याह के जरिए नस्ली तासुबात को बड़ी हद तक खत्म कर दिया। यूं भी नस्लें कब से गलत मलत हो रही हैं, जिसकी एक वजह खुफिया जिनसी तलुकात भी हैं। गो ये अमर अपनी जगह पर अफसोसनाक है, बहरहाल अब खालस नस्लियत का कहीं वजूद नहीं। खालस नस्लियत का दावा महज एक अफसाना है, ये दूसरी बात है कि नस्ली इम्तियाजात अभी देर तक कायम रहेंगे। अलबत्ता सोचने की बात यह है कि जब ये इम्तियाजात ख़त्म हो गए और इंसानों की एक मखलूत नस्ल पैदा हुई तो इसकी शक्ल क्या होगी। कुछ जिस्म की ज़ाहरी हैयत बदलेगी, कुछ जहन बदलेंगे, कुछ सीरत और किरदार में हम आहंगी पैदा होगी। रफ्ता रफ्ता सब के दिलो दिमाग एक ख़ास रंग में रंगे जाएंगे। इनका अपना एक जुदागाना तशख्स और शऊर होगा, मगर ये तब्दीलियां कैसे पैदा होंगी। नौ इंसानी को इस अमल में किन किन मरलों से गुजरना होगा, इसका तसव्वुर मुश्किल है। फिर फरमाया, कबूतर ही को देख लो, ये घरेलू भी है और जंगली भी। घरेलू कबूतर जंगली कबूतर ही की नस्ल से पैदा हुआ, मगर कैसे इसका किसी को इलम नहीं। हजरत इलामा को कबूतरों से बड़ी दिलचस्पी थी, बल्ला एक ज़माने में उन्होंने खूब खूब कबूतर पाल रखे थे। ये शौक इन्हीं बचपन ही से था, जिसमें राकमुल हरूफ के बरादरे अम जाद सैयद मोहम्मद तकी मरहूम भी इनके शरीक थे। इस सिलसिला में एक दिलचस्प वाक़या ये है कि राकमुल हरूफ जब क़याम दिल्ली में पहले मर्तबा मौलाना अब्दुल सलाम नियाज़ी मरहूम व मगफूर की खिदमत में हाजिर हुआ और बसिलसिला तारफ इनसे हजरत अलामा से मेरे तल्लक का जिक्र किया गया तो कहने लगे, मैं इनके इल्म फजल का कायल हूँ, लेकिन ये खुदी क्या चीज़ है, मैं खुदी को नहीं समझता, तुम समझाओ खुदी है क्या। सफा नंबर 193। मैंने अर्ज किया, मैं ये जुरत कैसे कर सकता हूँ कि आपके सामने जुबान खोलूँ, यूं भी जब बाएं इल्मो फजल आप नहीं समझे तो खुदी क्या है, तो मुझे ऐसा कम इलम इंसान इसे क्या समझेगा। इस पर मौलाना मुस्करा कर कहने लगे, इकबाल ने जब इसरार खुद लिखी और इसका एक नुस्खा हमें भेजा तो हमने इसकी बड़ी तारीफ की, और हम वाकई समझते हैं कि हिंदुस्तान में इनके इल्म फजल को कोई नहीं पहुंचता। अल्लाह ताला ने इन्हीं जो बसीरत दी है किसी को नहीं मिली, लेकिन जब हमने इन्हें लिखा कि ये जो आपने बार बार खुदी की तरफ इशारा किया है तो हम नहीं समझे खुदी क्या है, हमें समझा दीजिए, तो इसके जवाब में उन्होंने फरमाया, हमारे पास कबूतरों का एक नहायत आला जोड़ा है, इजाज़त हो तो आपकी खिदमत में पेश कर दिया जाए। इतना कहकर मौलाना ने साइमीन की तरफ देखा और कहने लगे, हम इनका मतलब समझ गए। मौलाना शिद्दत से वादतुल वजूद के कायल थे। हजरत अलामा शायद इन्हीं ये समझा रहे थे कि जिस चीज़ के बारे में आप तजाहिल आरफाना से कलाम ले रहे हैं वही बार बार और नए से नए रूप में आपके सामने आती रहती हैं, यही खुदी है। मौलाना का हाल ही में इंतकाल हुआ है, मुमकिन है कोई माहिर हवानियात हजरत अलामा के इस अरशाद पर नज़र डाल सके जो उन्होंने घरेलू कबूतरों के बारे में फरमाया। मैंने अर्ज़ किया, अगर नस्लों के गलत मलत से कोई अच्छी तवक्को हो सकती है तो हमें इस सिलसिले में अमलन कदम उठाना पड़ेगा ताकि इन सब अवामल की नफ़ी होती रहे जो अखलाकी और इज्तमाई या नफ्सियाती एतबार से नस्ली तासब को हवा देते हैं। सफ़ा नंबर 194। फरमाया, इस्लाम इस सिलसिला में अमलन कदम उठा चुका है, हमें इस्लामी तरीक़ा ज़िंदगी इख्तियार करना चाहिए। इस्लाम की नज़र फ़र्द के ज़ाती शरफ पर है, हसब नसब पर नहीं है। नस्ल और रंग का इख्तलाफ कोई ऐब की बात नहीं, कुरान पाक ने इसका शुमार आयत आलिया में किया है। अलबत्ता हमें इस बाब में अक्ल कलील मज़ाहमत से काम लेना चाहिए। हजरत अलामा ने ये अल्फाज अंग्रेज़ी में फरमाए थे, लाइन ऑफ लीस्ट रेसिस्टेंस। इस सिलसिला में मुलाहजा हो, हजरत अल्लामा का बयान बावनवान इस्लाम और अहमदीयत। मैंने अर्ज़ किया, मुझे सिर्फ इस मसले का हल मतलूब था। मैं सोच रहा था कि इस्लामी रियासत में सब ही किस्म की नस्लों के अफराद शामिल होंगे। अब अगर बाद आला खसाइस और फजाइल के पेश नज़र, मसलन बातबार शुजात व हमीयत या सियासत फहमी के किसी खास नस्ल की पासदारी मंजूर हुई, तो दूसरी नस्ल में इसके खिलाफ बोग्ज़ व हसद के जज्बात पैदा हो जाएंगे। लिहाजा अगर आप के पास दारी नहीं की जाती तो रियासत फहमी ऐसे फजाइल मौजूद हैं। अंदरी सूरत या तो ये होगा कि हम रियासत का खतरा वजूद में डाल देंगे, या फिर वही नस्ली इम्तियाजात कायम होते चले जाएंगे। अरशाद हुआ, अगर रियासत का जोर फजाइल पर है और इसके साथ वो अफराद की अखलाकी तरबियत भी कर रही है, तो इस सूरत हाल का तदारक मुमकिन है। अलबत्ता ये एक ऐसा अमल है जो बतदरीज रूनमा होगा। मैंने अर्ज़ किया, लंदन टाइम्स ने लिखा है कि आलम इस्लाम में इस वक्त नस्ली तफरीक का गलबा है। फरमाया, मुझे टाइम्स की राय से इतफाक नहीं, ये तफरीकात कुछ तो कहने वालों के अपने जहन की है। सफ़ा नंबर 195। और कुछ मगरबी सियासत की पैदा करदा, तुम यूरोप नहीं गए वरना अपनी आंखों से देख लेते कि एक जर्मन को एक अंग्रेज से बावजूद इश्तराक तहजीब व तमदन व तल्लक खातर नहीं, जो एक अफगान को तुर्क से है। और ये बावजूद आलम इस्लाम के इन हतात और इस अमर के मुसलमानों का रबत एक दूसरे से कट गया है, लेकिन वो मिलते हैं तो बिछड़े हुए भाइयों की तरह। और जिनको मुस्तशरकिन ने बज़ाहिर बड़े मसूमाना अंदाज में हवा दी, मसलन ब्राउन ने तारीख अदबियात ईरान और ब्लंट ने अहल नजद पर कलम उठाते हुए। और ये वाकया है कि इस्लाम से बढ़कर दुनिया की कोई तहरीक हतमी के असर हाजर में इज्तमालियत भी नस्ली तासुबात का खात्मा नहीं कर सकी। इस्लामी रियासत अपनी एहसास से हट गई, मलूकियत और शनशाहियत ने नस्ली तासुबात को हवा दी, हवस से इक्तदार ने नस्ल और बरादरी के नाम पर सियासी वफादारियां कायम कर दीं। बाएं हमा अखुवत इस्लामी का जज्बा इन सब बातों पर गालब आया और आलम इस्लाम में ना जना ना उर्जवाए तहजीब व तमदन व वो इख्तलाफ इफ्तराक रूनमा हुआ जिसका तल्लक नस्ली तासुबात अदावत और मुनाफरत से है, और जिसका इजहार यूरोप की तारीख में बराबर होता रहा और आज भी हवाले आलम में हर कहीं हो रहा है। दरअसल अखुवत इंसानी के कुछ मानी है और इसका अमली असूल का कोई जरिया है तो सिर्फ इस्लाम, और वो है हकीकत है जिसका अहले मगरब को भी इतराफ़ है। देखिए इस सिलसिला में तश्कील जदीद अलिहाद इस्लामिया नीज हजरत अलामा के मजामीन और मुतफरक अरशादात बयानात और मकतूबात। इस्लाम ही हमारा वतन है और इस्लाम ही हमारी नस्ल, जैसा कि हजरत सुलेमान फारसी ने फरमाया था, मुसलमान इब्ने सलाम इब्ने सलाम। इस्लाम कैद वतन से आज़ाद है। इसका मकसद है एक ऐसे इंसानी मुआशरे की तश्कील जो मुख्तलिफ नस्लों और कौमों को बाहम जमा करते हैं, एक ऐसी उम्मत तैयार करे जिसका अपना एक मखसूस शौर ज़ात हो। सफ़ा नंबर 196। मैंने अर्ज़ किया, आपका रिशाद बजा है और मैं इससे ये समझता हूँ कि हमें तारीख से सबक हासिल करना चाहिए। हमें चाहिए कि नस्ली असबियत और नस्ली तासब में फ़र्क करें ताकि नस्ली तासबात का रफ्ता रफ्ता अजाला हो जाए। अरशाद हुआ, असबियत तो बहरहाल इस्लामी होनी चाहिए, रहे नस्ली तासबात, सो ये जैसा कि मैंने कहा एक दिन में दूर नहीं होंगे। इसके लिए सब्र और मेहनत की ज़रूरत है। हमारी कोशिश बहरहाल ये होनी चाहिए कि अपने दिलो दिमाग और सीरत व करदार में वो रंग पैदा करें जिसकी इस्लाम ने तलकीन की है और जिसमें शरीयत का इत्तबा लाजम ठहरता है। गोया शरीयत का इत्तबा ही नस्ली तासुबात के अजाले का वाहिद जरिया है और इसी से गुरेज इनकी मौजूदगी का सबसे बड़ा सबब। लेकिन ज़रूरत इस अमर की है कि शरीयत की तर्जमानी इनफरादी और इज्तमाही दोनों पहलुओं से की जाए। मैंने अर्ज़ किया, जनाब फरूके आलम का किरदार सर ता सर सलामी था, मगर आपके इसी किरदार से आगे चलकर नस्ली तासब का जवाब पैदा किया गया। अरशाद हुआ, ये सही है, लेकिन फिरवन सी हक बात है जिससे बातल का काम नहीं लिया जाता। मेरा जवाब बहरहाल यही है कि अगर अब्बासी और अमवी हुकूमतों ने ऐसा किया तो बड़ी गलत बात की, इनका किरदार फरूकी होना चाहिए था। हत्ता के खिलाफत इस्लामिया का सही इंतसाब भी कायम ना रहा, यानी बजाय खिलाफत इस्लामिया के खिलाफत बनू अमिया, खिलाफत अब्बासिया, खिलाफत फातिमिया और खिलाफत उस्मानिया की असलाहें वाजे हुई। इतने में नवाब शाह नवाज खान तशरीफ ले आए। मैं तजीमन उठ खड़ा हुआ। सफा नंबर 197। हजरत अलामा ने भी बिस्तर में जरा सीधे बैठे हुए इनका खैर मुकदम किया, बड़े तपाक से मिले और मिजाज पूछा, लेकिन मैंने देखा बाहर सहन में हजरत सालक व महर खड़े हैं जैसे किसी का इंतजार हो। चुनाचा थोड़ी ही देर में एक गाड़ी सहन में दाखिल हुई और नवाब मुजफ्फर खान, सैयद मोहम्मद अली जाफरी, सैयद मोहसिन शाह और दो एक और हजरात गाड़ी से निकलकर बरामदे में दाखिल हुए। अली बख्श आगे बढ़ा और इन्हें निशस्तगाह में बिठा दिया, फिर अंदर आकर इतला दी। मालूम हुआ शहीद गांजे के सिलसिला में अपील का मसला मशवरा तलब है। हजरत अल्लामा उठे और निशस्तगाह में तशरीफ ले गए और मुझसे फरमाया, इन हजरात को तख्लिये की जरूरत है, लेकिन तुम इंतजार करो, अशार नकल किए बगैर ना जाना। नंबर एक मरहूम वली मरो ममोट, नंबर दो ये हजरात मुताज तारफ नहीं। मैं हजरत अल्लामा की ख्वाबगाह से निकलकर बाहर सेन में आ बैठा। देर तक बेगम हुसैन से बातें होती रहीं, मगर जब वक्त ज्यादा हो गया तो अली बख्श से माजरत कर दी। मैंने कहा सुबह सवेरे हाजिर खिदमत हो जाऊंगा, शाम को शायद मौका ना मिले। डोरा लैंड वेयर, हजरत अल्लामा के यहाँ बच्चों की गवर्नस। सफा नंबर 198। दोशिंबा 7 फरवरी। हसबे करारदाद अली सुबह हाजिर हो गया, अभी 8 भी नहीं बजे थे। हजरत अल्लामा ने फरमाया, इतनी सवेरे कैसे आना हुआ? मैंने अर्ज किया, कल के मशवरे ने बहुत तूल खेचा, आपका अर्शाद था अशआर नकल किए बगैर ना जाऊं, लेकिन एक तो वक्त ज्यादा हो गया था, दूसरा मुझे कुछ काम था इसलिए ठहर ना सका। मैंने अली बख्श से कह दिया था सुबह जल्दी हाजिर हो जाऊंगा। मैंने ब्याज उठाई तो हजरत अल्लामा ने सरहाने की तरफ पलंग के साथ लगी हुई तपाही से कागज का एक पुर्जा उठाया जिस पर कहीं कहीं एक आधा लफ्ज दर्ज था। फिर इस पर नजर डाली और फरमाया, मैंने कलम हाथ में ले लिया तो हजरत अल्लामा ने यक बाद दीगरे एक एक शेर लिखवाना शुरू किया। ये 6 शेरों की एक नज़म थी जिसे मैंने दर्ज ब्याज कर दिया। फिर अर्ज किया, कल का मशवरा कैसा रहा? ये अनवान हजरत इंसान देखिए अरमगान हिजाज, इसके बाद कोई शेर उर्दू में नहीं हुआ। और हजरत अल्लामा का ये ख्याल के सूरे इसराफील के नाम से एक नया मजमुआ कलाम तरतीब दिया जाए पूरा ना हो सका, लिहाजा इस वक्त तक जितना उर्दू कलाम हो चुका था इसे अरमगान इजहाज में शामिल कर दिया गया। अरशाद हुआ, कल ये लोग बहुत देर तक बैठे रहे, इनका ख्याल प्री काउंसिल में अपील दायर करने का है, लेकिन मैंने इनकी राय से इत्तफाक नहीं किया। मैंने तो साफ साफ कह दिया था मैं इसके खिलाफ हूँ। इतने में चौधरी साहब आ गए, वो बड़े बड़ा फोख्ता मालूम होते थे। अस्सलाम वालेकुम के बाद उन्होंने इनकलाब और जिमीदार तपाई पर रख दिए और कहने लगे, सफा नंबर 199, जरा देखिए तो इनकलाब की क्या खबर शाया कर दी। मालूम होता है कल का मशवरा एक चाल था, और वो ये कि जवेद मंजिल की इस मुलाकात को जलसे का नाम देकर ये जाहिर किया जाएगा कि आप भी प्री काउंसिल में इजलास काउंसिल में अपील दायर करने के हक में हैं। इस पर हजरत अल्लामा का चेहरा गुस्से से सुर्ख हो गया और इनकी जुबान से बेख्तियार ये अल्फाज निकले, हाजा बुतान अजीम। फरमाया, चौधरी साहब इस खबर की फौरी तरदीद हो जानी चाहिए, मैं हरगिज अपील के हक में नहीं हूँ। इसमें कोई शक नहीं कि ये हजरात देर तक बैठे आपस में मशवरा करते रहे, लेकिन मैंने माजरत कर दी थी, मैं तो जल्दी ही उठकर पलंग पर आ लेटा था। फिर जब ये हजरात गए तो इतना जरूर कहते गए कि हमारी राय अपील करने की है, लेकिन मैंने मक्कर अपनी राय का इजहार कर दिया था, मैं इसके खिलाफ हूँ। हजरत अलामा ने बात खत्म की तो हमारे तज्जब की कोई इंतहा न रही। समझ में नहीं आया कि इनकलाब इनकलाब और जिमीदार ने ऐसी गलत बयानी किस लिए की। ये बड़ी गैर जिम्मेदारी की बात थी। जिमीदार की तरफ से तो खैर कहा जा सकता था कि इससे जैसी इतला मिली शाया कर दी, लेकिन इनकलाब ने ऐसा क्यों किया? मदीरान इनकलाब तो इस मशवरे में शामिल थे, इन्हें मालूम था कि हजरत अलामा अपील के खिलाफ हैं। बिलाखर तय पाया कि जो हुआ सो हुआ। अब मसहलत ये है कि हजरत अलामा की तरफ से फौरी एक तरदीदी बयान शाया कर दिया जाए। लिहाजा मैंने फिर कलमदान उठाया और हजरत अलामा और चौधरी साहब के माह मशवरे से एक मुख्तसर सा बयान लिखा। बयान साफ हो गया तो हजरत अलामा ने मुझसे फरमाया कि आज ही हजरत सालक व महर से मिलूं और इनसे कह दूं कि इस खबर की तरदीद शाया कर दें। ओके ओके के बाद चौधरी साहब तो दफ्तर चले गए और अली बख्श ने ये देख कर के धूप निकल आई है हजरत अलामा का पलंग बाहर सेन में डाल दिया। हजरत अलामा सेन में तशरीफ ले आए। लेकिन इनकी तबीयत बड़ी मकदर थी। इन्हीं रंज था कि इन हजरात ने जो कल मशवरे के लिए आए थे महज अपनी मसहलत जोई और मफाद पसंदी की खातर एक ऐसी बात इनसे मंसूब कर दी जिसका उन्होंने हरगिज हरगिज रजामंदी का इजहार नहीं किया था। उन्होंने ऐसी गलत बयानी क्यों की? इस झूठ से फायदा। हजरत लामा बार बार फरमाते, अफसोस है एक तो इस फरीक पर जो बरसरे इकतदार है और जिसने मस्जिद को गिरते हुए देखा और चुपचाप खाना खुदा की बेहरमती बर्दाश्त की, मगर फिर जब मुसलमानों की मिली गैरत ने जोश मारा तो इसने भी बतकाजाए मसहलत महसूस किया कि इन्हदाम मस्जिद पर एहतजाज लाजम है और अदालत का दरवाजा जा खटखटाया। अब अदालत से कोरा जवाब मिला है तो प्री काउंसिल में अपील की सूझी। मतलब ये है कि वक्त गुजरता जाए और मामला टलता रहे। दूसरे इन लोगों पर जो एक बीमार के यहाँ मशवरा के लिए आए और जिन्होंने ये जानते हुए कि इसकी राय अपील के खिलाफ है, यहाँ तक कि वो इनके मशवरे में शरीक भी नहीं हुआ, ऐलान कर दिया कि वो भी अपील के हक में है। ये बड़ी लोग और नारवा बात है, सरता सर झूठ और अहतमाम। फिर सितम यह है कि उन्होंने इस मुलाकात को जो सिर्फ निजी गुफ्तगू तक महदूद थी बकायदा मशवरे का रंग दे दी और यूं मुझे दो गुना एजा दी जिसकी इनसे हरगिज तवक्को नहीं थी। मैं नहीं समझता था कि वो ऐसा करेंगे, ये कैसी बेदर्दी है। उन्होंने मुझ पर जुल्म किया और अपने इस फैसले से कि अपील करना चाहिए मुसलमानों पर भी जुल्म कर रहे हैं। यहाँ ये अर्ज कर देना जरूरी है कि डॉक्टर आशिक हुसैन बटालवी ने अपनी किताब इकबाल के आखिरी 2 साल में इस वाक़े को जिस तरह बयान किया है सही नहीं, और इसकी वजह यह है कि मुसन्नफ ने सुनी सुनाई बातों पर एतबार कर लिया है। यहाँ ये अर्ज कर देना भी जरूरी है कि मौलवी सलाहुद्दीन मरहूम मदीर अदबी दुनिया ने मुझसे एक मरतबा दरियाफ्त भी किया था।